के जो भगवान के पूरी तरह जो भगवान के भावनाओं में जो डूबे हैं वैसे व्यक्ति वो हर वस्तु को यथारूप में देख सकता है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है उक्रमंस्तान स्थितान वापी भुंजाना वा गुणान्वितम विमूढ़ानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो विमूढ़ व्यक्ति जो है वो व्यक्ति हर वस्तु को देख कर भी वो नहीं देख पाता है, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है वो हर वस्तु को यथारूप में ठीक ठीक देखता है, वो जानता है कि ये वस्तु का वास्तविक उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए दृष्टि किस पर, वो जो देखने की जो दृष्टि और निर्भर होता है व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर। जैसे कि अगर किसी का अगर गाड़ी खराब हो गया तो अगर वो गैरेज में गया तो गैरेज में जब जाता है तो गैरेज वाला क्या करता है, वो एक हथौड़ा लेता है और दो ठोकता है इंजन में और गाड़ी शुरू हो जाता है। तो बोलता है अरे तो कमाल का है। तो उन्होंने पूछा कितना फीस हुआ, तो बोला 200। बोला 200 केवल दो बार हथौड़ा मारने 200 ले रहे? अरे ये तो क्या, मैं तो चार बार हथौड़ा मार सकता हूँ। तो मेरे को 400 दोगे? तो बोले नहीं, वह हथौड़ा मारने का तो केवल 10 रुपया, लेकिन 190 रुपया वो ज्ञान के साथ कि कब किधर कहाँ मारना, तो वो महत्वपूर्ण है। तो नॉलेज जो है, ज्ञान, वो बहुत ही आवश्यक है। जब तक वो ज्ञान नहीं रहेगा, व्यक्ति वो कैसे कार्य कर पाएगा व्यवस्थित रूप से। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कबूल करते हुए ये व्यक्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक गुण है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति पहली बात तो कभी वो स्वीकारता नहीं है कि मैं अज्ञानी, अज्ञान की अवस्था में हूँ। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने आप में इस प्रकार प्रकट होकर वो कह रहे हैं और कि मैं अज्ञान में डूबा हूँ। तो अज्ञान में डूबा है तो ये ऐसे नहीं कि अज्ञान में ही व्यक्ति पाप करता है। केवल पाप ही नहीं, अज्ञानी व्यक्ति ये भी नहीं जानता है कि सही क्या है और पुण्य क्या है, वो भी नहीं जानता, या लोगों के हित कैसे किया जाए। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में ये विचार था कि मैं युद्ध नहीं करता तो हित होता। तो ये भी एक प्रकार का युधिष्ठिर महाराज का एक अज्ञानी था, क्योंकि अज्ञान की अवस्था में हम कभी किसी का हित भी नहीं कर पाएंगे। हित करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो मगर यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि मैं अज्ञान की अवस्था में पाप कर बैठा। तो ये एक यहाँ पर एक शिक्षा ये दिखाई देती है कि अगर किसी पर अगर हमें करुणा भी करना है तो वो भी ऑथराइज्ड होना चाहिए, वो भी शास्त्र के अनुसार उचित रहना चाहिए। अगर जब तक वो शास्त्र के अनुसार वो उचित नहीं रहेगा, तो वो दूसरे के प्रति जो करुणा या जो अनुकंपाई है, वो व्यक्ति के लिए दुष्कर स्थिति प्राप्त करता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, जहाँ पर सौभर्य मुनि जो थे, उन्होंने जब जल के भीतर 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप करने का जो संकल्प लिया था, तो उसी जल के भीतर वहाँ पर मछलियाँ जो थी वो हमेशा घबराती थी और घबराते हुए इधर उधर भागती थी। तब उस समय सौभर्य मुनि ने इस मछलियों की इस अवस्था को देखकर उनके प्रति उनको दया आई, और दया आकर वो समझ गए कि इनके घबराने का मुख्य कारण क्या है। घबराने का मुख्य कारण यह है कि गरुड़ जो है ये मछलियों को खाता है। तब जो भगवान का जो वाहन जो गरुड़, उनको उन्होंने श्राप दिया कि तुम वापस इधर आओगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। हालांकि गरुड़ सक्षम थे उनके सारे श्राप को शमन करने के लिए, मगर उन्होंने ऐसे किए नहीं। उन्होंने उन मुनि को आदर सम्मान देते हुए उस स्थान में पुनः वृंदावन में प्रवेश नहीं किया। और यहाँ पर मुनि ने सोचा कि मैंने इनके प्रति करुणा किया, अनुकंपा किया, लेकिन हुआ क्या, ठीक उसका विपरीत। उसका तो परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ ही। सौभर्य मुनि ने जो इस प्रकार के क्रिया किए, उसका तो दुष्परिणाम उसको प्राप्त हुआ, वो अपने उस संकल्प से चूक गए। ये एक कारण था। और दूसरा ये कि जिनके प्रति उन्होंने करुणा किया, उनका भी दुष्परिणाम हुआ, यानी कि जो मछलियों का भी वहां पर दुष्परिणाम हुआ। कैसे? क्योंकि सर्प कालियानाग जो था वो गरुड़ से घबराते हुए भागा, और गरुड़ से घबराते हुए भागते हुए उन्होंने देखा एक ही स्थान है जहां पर मैं छुप सकता हूँ, वो है वृंदावन, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ को आने के लिए मना किया है। तो उन्होंने ऐसे सोचकर उसी वृंदावन में आश्रय ग्रहण करके उस यमुना नदी में वो अपने आप को वहां पर अपना डेरा जमा लिया। और हुआ यूं कि उन्होंने अपने मुख से इतने जहर उगाले जिससे पूरा यमुना नदी जो था विषैला हो गया। और पहले तो गरुड़ एक दो मच्छी को खाता था, अब तो पूरी की पूरी मच्छी के जितने भी झुंड थे सब मर गए। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने करुणा किया, लेकिन करुणा का क्या हुआ, दुष्परिणाम हुआ। तो और यहाँ जब भी व्यक्ति इस प्रकार के अज्ञानता की जब तक वो कृष्ण भावनामृत से जब तक वो लाभान्वित नहीं होता तब तक वो व्यक्ति दूसरे को करुणा भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रथम उसे ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की यही अज्ञानता का पर्दा छाने के कारण वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करुणा किसे कहते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में भरत महाराज का। भरत महाराज ने हिरण के प्रति करुणा किया। उन्होंने सोचा कि ये हिरण जो है ये इनका कोई सहारा नहीं है, ये बछड़ा इनकी माँ तो भाग गई, तो इन्हें इनकी रक्षा के लिए मैं इसका संरक्षण करूँगा। और ऐसे सोचकर उन्होंने हिरण को अपने पास रख लिया, मगर करुणा करते करते वो उसी में ही लिप्त हो गए। तो वैसा जो करुणा युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इसलिए जो लोग जब तक व्यक्ति भगवान के भक्ति में जब तक पूर्ण ज्ञान से जब तक वो आवृत नहीं होते या वो भगवान के भक्ति का जब जागरण नहीं होगा, उस ज्ञान के चक्षु जब तक नहीं खुलेंगे तब तक लोग किसी का भी हित नहीं कर सकते। इसलिए भक्त ही इस संसार में ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा हित कर कार्य करते हैं, दूसरे के भलाई के लिए वो कार्य करते हैं। जैसे थाने में एक घटना घटी थी मुंबई के यहाँ पर। तो हुआ यूं कि वहाँ पर एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति था और वो लोगों को इसी प्रकार दान दक्षिणा देने में बड़ा विख्यात था। तो हुआ यूं कि एक समय वहाँ पर उनके जो विरुद्ध जितने भी पार्टी थे उन लोगों ने उनको आधी रात में उनके पेट में छुरी घोंप कर भाग गए। तो उसी समय एक दूसरा व्यक्ति, वो लोग तो भाग गए, तो एक सड़क में दूसरा व्यक्ति जा रहा, तो उसने देखा कि अरे तो लहू लुहान हो रहा है और बस अपने प्राण को त्यागने वाला है। अब उसके हाथ में उन्होंने देखा कि ये छटपट आ रहा है, तो उनके हाथ में बिस्लरी बॉटल भी था, तो उन्होंने पानी वगैरह पिलाया और उसको लेकर गए अस्पताल में। अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने किया चेकअप तो पता लगा मर गया। दूसरे दिन कोर्ट में केस खींचा गया, तो कोर्ट में केस में डॉक्टर ने ये कहा कि ये व्यक्ति बच जाता था लेकिन जिसने इसको पानी पिलाया इसलिए वो जल्दी मर गया। तो हुआ यूं कि जज ने वो जो पानी पिलाने वाले व्यक्ति को जेल के कारागार में डाल दिया और जो मारा वो तो भाग गया। तो यहां पर ये बंदा उसको पानी पिलाकर उसकी सेवा कर रहा था, सोचा कि मैं कुछ अच्छा भलाई करूंगा, लेकिन उसका विपरीत परिणाम हो गया। इसलिए ज्ञान के बगैर किसी के भी अगर हम हित करने जाएंगे उसके लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ज्ञान रहना जरूरी है। किसी के ऊपर करुणा भी कर दें तो व्यक्ति को समझदारी रहनी चाहिए। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इस अज्ञान के पर्दे में छाने के कारण युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे लोगों का हित करूं। इसलिए वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अहो में पश्यताम अज्ञानम, अज्ञान के पर्दे छाने के कारण रीति रुद्धम दुरात्मना, और ऐसे होने से रीति रुद्धम मेरा हृदय जो है दुरात्मना यानी कि वो पूरी तरह पाप वृत्ति से भर चुका है क्योंकि अज्ञान छा गया है। तो ये पाप का शुरुआत इसी से है, अज्ञानता से। और फिर कहते हैं क्यों, तो वो उनका मुख्य कारण ये बताते हैं कि ये इस प्रकार पाप वृत्ति क्यों हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज को अपने आप में इस प्रकार की एक ग्लानी हो रही है कि मैंने मेरे हृदय के अंदर संसार को राज्य भोग करने की वासना भरे रहने के कारण मैंने इन लोगों को मार दिया, जीते जी कितने लोगों की हत्या कर दी। तो ये सारा हत्यारा का जो मुख्य कारण है वो है मेरे अंदर का वासना। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज अपने आप में इस प्रकार वो महसूस कर रहे हैं। बाकी ये एक भक्त का एक गुण है, वो ये है कि अगर उनकी गलती नहीं भी रहेगी तो भी वो अपने गलती को स्वीकारते हैं, जबकि उनकी गलती नहीं रहने के बाद भी। जैसे परीक्षित महाराज जिन्हें जिस समय जब उन्हें श्राप मिल चुका था 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो हालांकि उनका वहां पर कोई दोष नहीं था, ये तो एक भगवान की एक योजना थी। परीक्षित महाराज जो अपने प्यास को कैसे नहीं सह सकते, जो बचपन में ही जो ब्रह्म के तेज को, ब्रह्मास्त्र के तेज को जिन्होंने सह लिया, तो वो प्यास के तब तेज अग्नि को क्यों नहीं सह सकते। जब ब्रह्मास्त्र के अग्नि को सह सकता है कोई, तो प्यास के अग्नि को क्यों नहीं सह सकता है, ये तो बात एकदम विरोधाभास दिखता है। लेकिन वास्तविकता परीक्षित महाराज तत्पर भी अपने गलती को स्वीकारते हुए उन्होंने कबूल किया कि हाँ मेरी गलती है। ये एक भक्त का एक गुण माना देखा जाता है कि वो गलत ना रहकर भी वो अपने आप को गलत स्वीकार लेते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने इसी बात को समझाते हुए वो बता रहे कि ये सारा इसका मुख्य कारण क्या है, मैं इसका दोषी हूँ। तो ये भक्त के एक गुण है। जिस समय चित्रकेतु महाराज जब अपने वाहन में जब उड़ान लगाते हुए जब जा रहे थे, तब उन्होंने एकाएक महादेव को और उनके समक्ष जितने भी श्रोतागण थे उन लोगों को देखकर उन्होंने एकाएक हास्यकार के लिए उन्होंने एक ही इसी प्रकार कह दिया। तो एक विनोद करने के लिए उन्होंने कह दिया कि देखिए प्रवचन दे रहे, विरक्ति का प्रवचन दे रहे पत्नी को गोद में बिठाकर। अब वो तो महादेव ने सुनकर उन्होंने भी मंद मंद मुस्कुरा दिए कि ये विनोद के लिए कह रहे, लेकिन पार्वती को उनका पारा चढ़ गया। तो वहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते कि माता जी का कुछ गारंटी नहीं है, कभी कभी भी किसी भी समय कहीं भी तो किसी भी प्रकार का उनका रिएक्शन हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पर पार्वती वो बरस पड़ी और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कैसे पिता को माता को कैसे आदर सम्मान देना चाहिए, इस प्रकार कहते और करके श्राप दे दिया। तो चित्रकेतु महाराज ने उनको कबूल किया कि हाँ मेरी गलती, कि हाँ ये मैंने किया इसके लिए, और हालांकि उस समय उनकी कोई गलती भी नहीं थी, और उन्होंने उसे स्वीकार कर वो दंड को स्वीकार लिया और एक असुर के शरीर को प्राप्त किया उन्होंने। तो ये एक भक्त के गुण हैं, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ये दर्शा रहे कि जो युद्ध का जो दुष्परिणाम हुआ उसका मुख्य कारण मैं अकेला हूँ। और फिर आगे बताते हैं युधिष्ठिर महाराज पारक्ष्यैव देहस्य, वो बताते हैं कि वास्तविकता ये जो देह जो है, इस देह का जो मूल जो लक्ष्य जो होता है वो किस किसके लिए होता है, दूसरे के हित के लिए होता है। देह का जब किसी को देह प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो ये एक ही कारण कि कैसे लोगों का हित करे। और जब व्यक्ति इस देह को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है तो निश्चित है कि उसे कष्ट और वेदना प्राप्त होती है। इसलिए बताया जाता है अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्षय क्षण भंगुरै जन उपकर्यात अस्वार्थैर मृत्या स्व जान जानती विग्रही। तो कहते हैं दधीचि मुनि देवगणों को, देवताओं गण को समझाते हैं, जब देवता गण आए थे दधीचि मुनि के पास, क्योंकि देवताओं को भगवान नारायण ने उपदेश दिया था कि दधीचि मुनि के रीढ़ की हड्डी से तुम वज्र बनाना, जिस वज्र से वृत्तासुर का वध हो सकता है और कोई हथियार नहीं मार सकता। तो ये विचार करते हुए अब आए थे इसी प्रस्ताव को दधीचि मुनि के पास रखते हुए और कहने लगे कि हे मुनिवर, आप अपने रीढ़ की हड्डी मुझे दे दो। अब देखिए, कोई देवगण जो इतने बड़े पदवी में हैं, अब उन लोगों की क्या स्थिति है। देखिए, भगवान ने उन लोगों को ऐसे मोड़ पर लाया कि उनको भी भीख मांगना पड़ा। तो अब वो भीख मांग रहे किनके समक्ष, एक भगवान के वरिष्ठ भक्त के समक्ष, और वो है दधीचि मुनि। और भगवान अपने शुद्ध भक्त का यहाँ पर महिमा बता रहे कि देवगण भी झुक जाते हैं। तो वो आकर जब मांगे तो दधीचि मुनि ने केवल उन्होंने शुरुआत में उन लोगों को शिक्षा देने के लिए पहले तो उन्होंने कह दिया नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि सबको अपना शरीर बड़ा प्रिय है, तो मैं अपना शरीर क्यों दूँ। सब ये जो शरीर जब किसी को प्राप्त होता है तो उनका उनकी से देह से जो भी कोई जुड़े हुए संबंधी, बच्चे, पत्नी इत्यादि और संपत्ति सब कितना प्रिय रहता है। और एक तरह से देवगणों को उपदेश समझा रहे कि देखिए कि देह कितना कष्ट प्रदान करता है। और फिर इतने में देवगण कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, वो तो दूसरे के हित के लिए ही अपना जीवन जीता है। तो फिर दधीचि मुनि ने समझ गया कि इन लोगों को पता लग गया कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। फिर दधीचि मुनि कहने लगे, उनको समझाने लगे कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है उसके लिए सबसे बड़ा दुखदायी स्थिति है, और जो व्यक्ति दूसरे के स्वार्थ के लिए जीता है या दूसरे के भलाई के लिए जीता है वो सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। तो वास्तविकता भक्त का ये लक्षण या उनका यही एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कैसे दूसरे का भलाई करें, क्योंकि देह का अंतिम गंतव्य क्या है, देह का अंतिम गंतव्य है कि ये नश्वर है, क्षणभंगुरा, ये अंततः गत्वा इसका अंतिम परिणाम क्या है, जो बताते कुकुर श्रीघाल, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में वर्णन करते हुए कहते, संसार शरीरे पड़िया रोहिले, संसार शरीरे पड़िया रोहिले, पतंग विहांग सब विहार कोरीले। जब ये शरीर जब लाश अंतिम समय पर जब शमशान भूमि में जब डाल दिया जाएगा तो वहाँ पर उसी मरे हुए शरीर में पतंग विहंग सब विहार कोरी ले, उसी के ऊपर सब कीड़े मकोड़े फिर रेंगना शुरू हो जाता है। कुकुर श्रृगाल सब आनंद होइले, महोत्सव करी अमार देह लोही। और जितने भी कुकुर श्रृगाल जो भी है, ये सारे भेड़ और कुत्ते इत्यादि, ये सब मेरे शरीर को खा कर आनंद होई ले, उन लोगों के लिए एक प्रकार का फेस्टिवल है, महोत्सव करी कि आज हमें बढ़िया फीस्ट मिला है, और ऐसे सोच कर वो मेरे ही देह को खाएगा। तो वास्तविक इसका अंतिम परिणाम क्या है इस देह का, वो है नश्वर। और इस तरह भक्त इस बात को जानते हैं कि इसका अंतिम परिणाम यही है, इसलिए भक्त हमेशा चाहते हैं कि मैं परोपकार करूं। और युधिष्ठिर महाराज इसी बात को यहाँ पर बताते हैं कि देह का वास्तविक जो उद्देश्य है कि कैसे दूसरे का परोपकार करें। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त और श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि करित समर्थ तुमी होए दयामय, तुमी मना कर तबे अनायस हय। वो कहते हैं कि हे महाप्रभु, आप सामर्थ्य हो। क्या सामर्थ्य हो? कि जितने भी संसार में जितने भी जीव हैं सबका उद्धार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वासुदेव दत्त अपने हृदय के व्याकुलता को प्रकट करते हुए कहते हैं, जीवेरे दुख देखी मोरा हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोरे सिरे। वो कहते हैं कि जीव आत्माओं के जितने भी कष्ट और दुख है मुझे सहा नहीं जाता, ये मुझे देखा नहीं जाता। तो भक्त जो होते हैं वो इसी प्रकार रहते हैं, पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज वो इस प्रकार दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो गए थे। इसलिए यहाँ पर वासुदेव दत्त कहते हैं कि जीवेर पाप लाना मुनि कर नर्ग भोग, सगलेर जीवेर प्रभु गुच्छा भव रोग। जितने भी जीव आत्मा के जितने भी पाप है वो मेरे सर पे दे दो, मैं नरक जाने को तैयार हूँ और सबको भगवत धाम लेकर जाऊँ। इसलिए प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि वासुदेव दत्त वास ग्रेट वैष्णव इवन देन जीजस क्राइस्ट, यीशु मसीहा से भी ही वॉज क्वाइट एडवांस देन यीशु मसीहा। जीजस क्राइस्ट ने जब आए थे पृथ्वी में तो उन्होंने जो लोगों का परोपकार किया उससे भी ज़्यादा यहाँ पर करुणा वासुदेव दत्त के अंदर दिखाई देता है। तो चार पॉइंट बताते हैं कि कैसे वासुदेव दत्त किस प्रकार वो लोगों के हित चाहते थे। तो बताते हैं कि पहला, यीशु मसीहा वो उन्होंने उन लोगों को ही संरक्षण प्रदान करने का वचन दिया जो उनके फॉलोवर हैं, मगर वासुदेव दत्त ये नहीं। वासुदेव दत्त कह रहे हैं कि सभी को गुच्छा भव रोग, सगलेर जीवेर पाप, जितने भी जीवात्मा। ऐसे नहीं कि वासुदेव दत्त कह रहे कि मेरे जो फॉलोअर बनेंगे उनको ही आप तारना, ये नहीं कह रहे। यानी कि यीशु मसीहा से भी ज़्यादा विशाल अपने करुणा को व्यक्त कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं, फिर दूसरा बताते हैं कि जीजस क्राइस्ट ने लोगों को केवल पाप से मुक्त किया, लोगों के पाप को लेकर सूली पे चढ़े। लेकिन वासुदेव दत्त ने क्या किए, उन्होंने कहा सबको पाप छोड़ो भगवत धाम लेकर जाओ। ये वासुदेव दत्त का कहना है। फिर तीसरा बताते हैं कि इतना ही नहीं, तो वो कहते हैं कि जितने भी जीव आत्मा है ये सारे जीव आत्माओं के अपराध को भी क्षमा कर दिया जाए। तो भक्त अगर भक्ति करते हुए अपराध भी करेंगे तो फिर उनके गाड़ी थोड़ी बहुत भक्ति में अटक जाएगी। लेकिन यहाँ पर वासुदेव दत्त ये कह रहे हैं कि अपराध करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, सब अपराध भी मेरे सर पे दे दो। और चौथा जो कि अंतिम बताते हैं कि वासुदेव दत्त यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी को कोई विधि पालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जीजस क्राइस्ट के जितने भी फॉलोवर हैं उनको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वासुदेव दत्त क्या कह रहे हैं, कोई विधि नहीं, कोई 16 माला नहीं, कोई 25 माला नहीं, कोई मंगल आरती नहीं, सबको भगवत धाम एक ही साथ। देखिए वासुदेव दत्त कितने दयालु थे, ये होता है भक्त का अनुकंपा कि किस प्रकार वो लोगों के हित के लिए वो कार्य करते हैं। और इस तरह यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि परोपकारस्व देहस्य परोस्का परो परोपकारस्यैव देहस्य, यानी कि दूसरे के परोपकार के लिए अपने देह को निछावर करना। इसलिए भक्त के जीवन को उदाहरण दिया जाता है अगरबत्ती के समान। भक्त क्या करता है, अपना जीवन समर्पण कर देता है, अपने सारे करियर को आग लगा देता है। अपने जीवन के जो विचार जो होता है उनका जो पर्सनल एजेंडा वो उसको वो केवल स्वाहा कर देता है, अग्नि में भस्म कर देता है, लेकिन जलकर राख होते हुए करता क्या है, लोगों को सुगंध प्रदान करता है। यह है भक्त का जीवन। और ऐसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इस बात को वर्णन करते हुए बता रहे कि भव्यो में सुनेर हाता, ऐसे कई अक्षोणी सेनाओं का मैंने वध कर दिया। हालांकि शास्त्र स्वरूप प्रभु ने कुछ नोट्स भी दिया था, लेकिन समय थोड़ा कम पड़ गया इसे पढ़ने के लिए। उन्होंने महारति अतिरति महामहारति के विषय में कुछ ये कई बड़ा नोट्स है, इसमें से एक छोटा सा जो है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो अतिरति जिस किसे कहते हैं, जो अतिरति यानी कि जो एक साथ 10,000 के साथ युद्ध करते हैं उसको कहा गया अतिरति, और महारति यानी कि वो जो एक साथ 60,000 लोगों के साथ युद्ध करते हैं। और इसमें आते हैं कृपाचार्य अश्वत्थामा, सात्यकी, अभिमन्यु, कंस, द्रुपद, विराट इत्यादि। और इसके ऊपर अति महारथि, अति महारथि को जो एक साथ 12 महारथियों के साथ युद्ध कर सकते, एक साथ 12 महारथियां। अब 12 महारथी के साथ युद्ध करने वाले कौन कौन पराक्रमी निकले, तो कहते हैं वाली, रावण, परशुराम, जामवन, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अर्जुन, इंद्रजीत, ये सब अति महारथी थे। अब इसके ऊपर महा महारथी, अब ये जो है इसको कहा गया जो 24 अति महारथी के साथ युद्ध कर सकते। तो 24 अति महारथी के साथ युद्ध करने वाला वो महा महारथी है। और इसके व्याख्या करते हुए ये वर्णन किया गया इधर कि महा महारति करके कोई अभी तक हुआ ही नहीं। और क्योंकि अभी तक ऐसा समय नहीं आया कि 24 अति महारति एक साथ झुंड में आए हैं युद्ध के लिए, सामना के लिए। तो मुझे तो ऐसे ही लगता कि ये महा महारति दर्जा केवल कृष्ण को ही दिया जा सकता। हरे कृष्ण। अर्धरति यानी कि 1-to-1, प्रभु जी कुछ बताए अर्धरति, प्रभु जी बताए। हाँ, कर्ण को बोला गया था भीष्म पितामह, बोलिए अति अर्धरति मतलब क्या पूछा। मेरे हिसाब से 1-to-1, आप कुछ व्याख्या करिए प्रभु। अर्धरति के विषय में नहीं है, यस प्रभु जी आपका कमेंट है तो ठीक है, उत्तर देने वाले काफी वक्त है।
Gracias.
से मैंने कमलोचन प्रभु का लेक्चर सुना था, तो उसमें वो व्याख्या कर रहे थे दक्ष प्रजा प्राचीन परीक्षित को जब उपदेश देते महादेव, तो उसमें एक जगह पर एक उन्होंने व्याख्या किया था, मुझे वो टेक्निकल वर्ड नहीं पता है। उन्होंने बताए थे कि चार प्रकार के देखने की दृष्टि होती है भक्तों के, अलग अलग लेवल है। जो सबसे उत्तम जो होता है वो पापी और वो निष्पराधी दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। ये मुझे इतना ठीक से याद नहीं, लेकिन है अलग अलग लेवल है। और जहाँ तक हम देखेंगे वो उपदेशामृत के अनुसार उसमें तीन लेवल भक्तों के विषय में चर्चा किया गया है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम जो होता है वो सबको समान दृष्टि देखता है, कभी किसी में भेद नहीं करता है। लेकिन मध्य जो होता है वो हमेशा भेद करता है, ये पापी है या ये अपराधी है इस दृष्टि से देखता है, और जो मासूम है उसको अलग दृष्टि से देखते हैं, तो वो मध्यम अधिकारी होता है। तो इसलिए प्रचारक जो होते हैं उन लोगों को, वो उत्तम अधिकारी प्रचारकों को भी मध्यम अधिकारी में आने के बाद प्रचार करना पड़ता है, तब वो व्यवस्थित रूप से प्रचार कर पाते हैं, ऐसा वर्णन है। हमारे लिए प्रैक्टिकल यही है कि हमें लोगों को जो कृष्ण द्वेषी है उन लोगों से, हाँ अच्छा, डिवोटीज के बीच में, हाँ अच्छा, ये बात है। एक इसमें जैसे कि अथॉरिटी के समक्ष जब हमारा जब बात जाता है, तो अगर बहुत कड़क ये निर्देश लिया जाता है, तब उस समय हमें जो सही है वो गलत तो बताना ज़रूरी है। और जब आपस में, जब कैजुअल, जब संबंध में कुछ लेन देन में कुछ गड़बड़ होता है, तो उस समय हमें अपने आप के प्रतिशोध के लिए कभी कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा इस्कॉन एक इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट होने के नाते हमें उस इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट भी है, उस मैनेजमेंट में वो सही गलत का भी फैसला लिया जाता है। तो उस समय अपने आप के बचाव के लिए, रक्षा के लिए जो सही है वो हम कह सकते हैं, लेकिन जब आपस में भक्तों के बीच में जब संबंध में लेन देन में कुछ आनाकानी हुआ, तब उस समय व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए। तो ये दो देखा जाता है, क्योंकि हम जब आश्रम में भी रहते हैं या मंदिर भी आते हैं कोई बाहर से, तो उसका दो प्रकार का, अगर मान लो कि कोई मैनेजमेंट के पोस्ट में है, तो उसका दो प्रकार का रोल करना पड़ता है। एक है मैनेजर का पोस्ट, दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन, लोगों के साथ अच्छा संबंध भी रखना। तो ये दोनों को बैलेंस करते हुए उसे चलना पड़ता है। इसलिए कभी कभी जो मैनेजर के पोस्ट में रहते हैं, तो किसी किसी लोगों को लगता है कि ये इसका डबल रोल है, लेकिन वो उसे वो दोनों को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो कभी कभी करना पड़ता है, तो तब जाकर हमारा इंस्टीट्यूट बढ़िया तरीके से चलेगा। तो मगर कुछ त्रुटि या कमी होगी तो शास्त्र सत्र आप कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।